मैं शुरुआत वहां से करूंगा कि अब इंद्र और वृत्रासुर में युद्ध चल रहा है और वृत्रासुर जो है युद्ध के बीच में इंद्र प्रभु को उपदेश कर रहे हैं, तो इंद्र को उपदेश कर रहे हैं और फिर बाद में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ज्ञान निरंजन जनांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च सभी नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्री वार्षभानवी देवी दायिताय कृताब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे कृपानुग विरुधाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रुतानुगवराय ते गौरार्विर्भाव भूमे स्व निर्देशा सज्जना प्रिय वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचा कल्पा करुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वैतां सुरतो पंगोर्मम मंदामतीर्गति भक्तर्वस्व पदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्या वृंदारण्य कल्प ब्रह्मादौ श्रीमान रत्नागर सिंहासनस्थ शिशिराधा शिव गोविंद देव पृष्ठलाभि सेव्यमान स्मरामि श्रीमान रासलसारम्भी वंशी वट तटस्थिता दर्शन वेणु सुनिर्गोपीर गोपीनाथा श्रीयस्तु नमः। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं अध्याय 11 से शुरू कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है वृत्रासुर के दिव्य गुण द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ वृत्रासुर। तो यहाँ पर प्रसंग ऐसा चल रहा है कि युद्ध के दौरान इंद्र और वृत्रासुर के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान वृत्रासुर के सैनिक डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। वृत्रासुर एक महान हीरो होने के कारण वो अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे मित्रचिति नमुची कुलोम माय अनार्व शंभार तुम भागो मत। ये दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और इस दुनिया में कोई व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता और ये विधाता विधाता ने बचने का कोई उपाय बनाया नहीं है। अगर मृत्यु होनी है तो अगर आप युद्ध में लड़ते हुए मरोगे उच्च गति की प्राप्ति होगी। इसी को सुमेला कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं गीता में कि अगर कोई व्यक्ति धर्म युद्ध में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है तो उसको ऊंची गति की प्राप्ति हो जाती है। विश्व प्रोकार तात्पर्य में बोलते हैं कि अगर मृत्यु होने से व्यक्ति को उच्च लोगों की प्राप्ति होती है तो कौन होगा जो नहीं लड़ना चाहेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन डू नॉट डिजिस्ट फ्रॉम फाइटिंग इफ यू गेन victory in the fight you will enjoy a kingdom and even if you die you will be elevated to the heavenly planet. agar aap yuddh mein jeet jaoge to aapko rajya milega aur agar haar jaoge to swarg lok ki prapti hogi. to mahatvapurna cheez hai jo bhai bolte hain har vyakti ko marna chahiye acche karya karte hue glorious deeds karte hue. a glorious person is not meant to meet death like cats and dogs. mahan jaise kutte billi ki tarah nahi marna. हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि भगवान के सेवा में प्रचार करते हुए या मंदिर में सेवा करते हुए अपना देह त्याग करना। श्री भक्ति चरण ठाकुर कहते थे कि मेरा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से भस्म हो जाए या नष्ट हो जाए चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार। वो तुलना करते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ये अग्नि के समान है जिसके साथ ज्वालाएं स्वात सात लपटे हैं फ्लेम्स हैं। क्या बोलते हैं ज्वाला बड़े बड़े हिस्से में चतुर्दर्पण महाजन भो महाधन श्रेय कहो चंद्रिका विचरण सात भाग तो मेरा शरीर इसमें अर्पण हो जाना चाहिए। प्राण अर्थ धीय वाचा ये चार तरीके हैं जिसमें भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब कुछ दें प्राण। जब भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं उनका उनके लिए स्टैंडर्ड है पूरा प्राण अर्पण कर देना। जैसे आदमी जो कई लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं सवेरे उठ के मंगलाती मुझे पूरा करते हैं पुस्तक वितरण के लिए पिकनिक के लिए नहीं पुस्तक सब कुछ अर्पण करना। समय जाके शाम तक गुरु सेवा विष्णु सेवा ये गृहस्थ भी है तो उन्होंने यही सोच रहे कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए मुझे कृष्ण संसार को ही छाड़ी आना चाहते। तो दादा नाथ स्वामी महाराज संडे लेक्चर में ये भजन गाया थे नाड़ी या बोध भूमि नित्यानंद महाज्ञान उसको उन्होंने कनेक्ट किया था बलराम जी काम भी यमुना को प्रेम से बुलाते हैं तो प्रेम से नहीं आते तो ऑर्डर देके बुलाते हैं। तो व्यक्ति कोई भी आश्रम में हो उसको कोशिश करें तो पूरा प्राण अर्पण करें भगवान की सेवा से। नहीं तो कम से कम अर्थ अर्थ यानी पैसे जैसे यहाँ पे कई सज्जनों ने डोनेशन दिया जिससे बहुत सुंदर फूड फॉर लाइफ के लिए प्रसाद वितरण की सुविधा बनी है। तो अर्थ अर्पण करें जो भी चीज सबसे प्रिय है वो भगवान को दे दो सब जीवन सफल है उससे प्रिय जो सबसे अच्छी जो बेस्ट क्वालिटी है कृष्ण को दे जो घी में पकौड़ा बना दिया बचा हुआ घी भगवान को मत दे बेस्ट चीज जो भी बेस्ट आपको लगता है सबसे प्रिय है वो कृष्ण को अर्पण करें उसे कृष्ण प्रसन्न होते। अर्थ सबको प्रिय है दुनिया में है कोई व्यक्ति धन सब धन कमाना चाहते हैं और कोई भी ऐसे डोनेशन के लिए देना नहीं चाहते अर्थ अर्पण करने से धीय धीय नहीं बुद्धि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भगवान की सेवा करना और वाचन वचन जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ये वचन भगवान की सेवा में अर्पण है या जप कर रहे हैं वचन भगवान की सेवा में प्राण अर्थ दिए वाचन सब अगर भगवान की सेवा में अर्पण हो जाए ऐसे करते हुए देह त्याग हो जाए वो भी ग्लोरियस है। प्रभुपाद वृंदावन में थे और उनसे पूछा मैं क्या करूं अभी मुझे आखिरी दिन तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए जहाँ पर प्रभुपाद जी बोले सुप्रकृति प्रभु उनकी नई किताब आई है बहुत ही डिफिकल्ट थी उसमें वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने यही सुझाव स्वीकार किया था बोले अगर आप लंदन जाओगे तो बहुत से डिवोटीज को लाभ मिलेगा आपके संघ का बोले यश में जाऊंगा। प्रभुपाद जी सबसे अच्छी उदाहरण है प्राण अर्थ दिए वाचन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण। दो तरीके हैं महान मृत्यु की। एक है भक्ति योग के करते हुए स्नान त्याग करना, भगवान के विचारों में मैया सत्य मना पार कर मन लगा के, और दूसरा है युद्ध के क्षेत्र में स्नान त्याग करना। दोनों महान मृत्यु। कल आदमाश्री महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि कैसे कृष्ण के विचारों में रहना। कृष्ण बोलते मन मना, मेरे में मन लगाओ, मेरे को स्मरण करो। अभी हम किसको स्मरण करेंगे दादा? अपने को एनालाइज करो, किस व्यक्ति को ज्यादा याद करते हो जिसे आप प्रेम करोगे? लेकिन सर बहुत प्रेम है, बस ज्यादा याद आएगी जिसे आपका अटैचमेंट है। कृष्ण चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करो, इसलिए बोले मेरे को स्मरण करो। स्मरण करने का तरीका है नाम, स्मरण करने का तरीका है नाम जप करना, कृष्ण को स्मरण करना। तो अपने मन को कृष्ण के विचारों में मग्न रखना चाहिए। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, इन विचारों में रखना चाहिए। इससे पुनर्जन्म से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण के विचारों में मग्न रहना, अपने माइंड को सैचुरेट करना कृष्ण के विचारों, अनुकूल लेना, अनुकूल चीज है भक्ति में कृष्ण के विचार में रहना। यदि रामनवमी अपने मनाई इस दिन गोपति प्रभु जी ने सुना, बहुत सुंदर क्लास में, मैं जहाँ तो वृंदावन में था, मैं वहां तो सुनाई सुन रहा था क्लास इसके रिपोर्ट सुन रहा था। प्रभु जी ने बताया कैसे रावण रावण के कैसे रावण अनर्थ के रूप में कैसे रावण काम था। ये भगवान राम के विचारों में मग्न रहना, भगवान गौरंग के विचारों में मग्न रहना, ये कृष्ण के विचारों में नहीं रहना, के विचारों में नहीं रहना। हर व्यक्ति को कोई ना कोई व्यक्ति के विचार में रहना अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। लोग क्रिकेट स्टार के विचारों में रहते हैं। कल महाराज बता रहे थे कि लोगों की आप भारतवासियों में क्या कहना, क्या भारत के लोग कैसे हैं? कोई व्यक्ति अच्छा खेलता है तो आप उसको माला पहनाते हो, और बाद में वही व्यक्ति पूरे अच्छी तरह से पूरा प्रयास करने के बाद हार जाते हैं तो उसको जूते मारते हैं। तो बेचारे का क्या दोनों तरह से इक्वल ट्राई करें। तो ये तो दोनों के लिए हानिकारक है, क्रिकेट खेलने वालों के लिए और क्रिकेट देखने वालों के लिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं 11 मूर्ख खेल रहे हैं और 11 लाख मूर्ख देख रहे हैं। शिला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नहीं, खाली जॉर्ज बर्नार्ड इसने क्या ना। लेकिन कृष्ण के विचार में मग्न रहना बहुत अच्छी। तो वृत्रासुर इस तरह से अपने सेना को बोल रहे थे कि आप लड़ो, घबराओ मत। उस समय देवताओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी, तब वृत्रासुर देवताओं को डांटने लगे गुस्से में आकर। बोले हे देवताओं, ये मेरे साथ जो सैनिक है ना, सब बेकार है। वृत्रासुर बहुत फ्रैंक व्यक्ति है, ऐसे नहीं खाली देवताओं को डांट रहे, अपने सैनिक को बोल रहे हैं इन्होंने जन्म बेकार में लिया, ये माँ के गर्भ से बाहर क्यों आए पता नहीं। माँ के गर्भ से बाहर आए विष्टा के समान, और ये लोग भाग रहे हैं और तुम भी खराब हो। इतने लोग भुटकाया रहे, भाग रहे हैं, और आप भागते हैं व्यक्ति को पीछे से आप आक्रमण कर रहे हो, इसलिए आप भी खराब हो, आप हीरो नहीं हो। दोनों को डांट रहे हैं, और ऐसा जो मारना है वो आपको उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं कराएगा। बोथ ऑफ देम आर एबोमिनेबल, प्रभुपाद जी बोलते हैं बोथ आर एबोमिनेबल, देवता भी और असुर भी, दोनों का व्यवहार खराब है। जब लड़ाई होती है तो विरोधी पार्टी है उसको लड़ना चाहिए हीरो की तरह। महाभारत में प्रभुपाद जी के प्रवचन में कहानी है कि एक बड़ा राजा जो युद्ध करते करते बीच में लौट के आ जाता है, अपने घर में लौटता है, फिर पशु पूछती है कौन है, तो मैं तो पति हूँ। आप वो लड़ाई तो अभी चल रही है और आप कैसे आ गए? मेरे जो असली राजा होता है वो या तो युद्ध क्षेत्र में विजयी होकर आता है या फिर उसकी लाश वापस आती है, मृत्यु हो जाती है। वो ग्लोरियस है, दोनों महान है, आप वो मेरे पति नहीं हो सकते। फिर तो जाता है और युद्ध जीत के फिर वापस आते हैं। ये क्षत्रिय का एक सिद्धांत है तो भागना नहीं। एक बार महाभारत में ऐसा हुआ, युधिष्ठिर का जीवन खतरे में था और युधिष्ठिर तो इस तरीके से पीछे चले गए विश्राम कर रहे थे। अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो युद्ध में घायल हो गए, तो अर्जुन कर्ण से लड़ते लड़ते बीच में रुक के युधिष्ठिर से मिलने गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम आ गए, जय हो, तुम युद्ध में विजयी हो गए, बहुत अच्छा समाचार है। अर्जुन बोला, नहीं अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, मैं ब्रेक लेके आया हूँ। तो हमसे मिलने के लिए आए। आप क्षत्रियो को ऐसा कर रहे हो, आप कायर हो, आपके दांडी ध्वनि से किसी और को दे देना चाहिए, आपके दांडी ध्वनि से उठाने के लायक नहीं। सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी अगर कोई कहेगा कि मेरा गांडी धनुष फेंक दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तैयार हो गए ऋषि का वध करने के लिए। महाभारत बाहर होने से अंदर ही हो रहा था। पहले भाइयों और भाइयों के बीच युद्ध है, कजन भाई और अभी ऋषि और अर्जुन के बीच। भगवान कृष्ण आए सर्व कारण कारण है। कृष्ण ने आकर समझाता है, कृष्ण ने बताया उनको, अर्जुन ने कहा मेरा वचन है मुझे पूरा करना है। भगवान कृष्ण बोले ठीक है आप इनको बुरे शब्द कहकर उनकी बेइज्जती कर दो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए बुरे शब्द बोलना वो मृत्यु से भी बुरा होता है। तो अर्जुन ने इस तरह से भगवान कृष्ण की आज्ञा पर यीशु को कुछ अपशब्द बोले, बुरे शब्द बोले। लेकिन वास्तव में सब ये लड़ाई तुम्हारे कारण ही हुआ, तुम ही हो जो कि जीत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए थे, इसके कारण सब तकलीफ हुई। और चले गए शब्द बोले अंत में वंशी कंसर्ट माफी मांगे नहीं। तो पॉइंट ये है कि जो क्षत्रिय है वो कभी भी युद्ध में भागता नहीं है, भागता नहीं, सफलता असफलता भागता नहीं, लड़ना चाहते। वृत्रासुर इस तरह से यहाँ पे अपने सैनिकों की तुलना विष्टा से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है पेट से निकलते हैं, विष्टा भी पेट से निकलते हैं और पुत्र भी निकलते हैं गर्भ से। तुलसीदास बोलते हैं ऐसे, तुलसीदास को कोट करें, हालांकि तुलसीदास स्ट्रिक्टली वैष्णव परंपरा में नहीं है लेकिन फिर वो महान भक्त हैं। उत्तर भारत में तुलसीदास की रामायण बहुत पढ़ी जाती है, आपने सुना है कभी? दोहे और चौपाइयां होते हैं बहुत सारे, बहुत पॉपुलर है, इसलिए वाराणसी में वहाँ पर बहुत सारे, इसलिए वाराणसी के पास मैंने अयोध्या के पास वाराणसी के पास लिखा था मैंने ग्रंथ। तो श्रोपाल यहाँ तुलसीदास को कोट कर रहे हैं कि जो मूत्र और पुत्र दोनों एक ही स्थान से आता है, दोनों एक जगह से आता है। तो अगर पुत्र जो है भक्त नहीं बने या कोई महान हीरो नहीं बने स्पिरिचुअल हीरो, मतलब यहाँ से अच्छी चीज नहीं करे तो मूत्र के समान आप सब वैष्णव वैष्णवी जो जो भगवान के भक्त बने हैं अपने माता पिता को धन्य कर रहे हैं। नहीं तो अगर तो पुत्र या पुत्री अगर भगवान का भक्त नहीं बने तो उसने सिर्फ अपने माता पिता को तकलीफ ही दी, 9 महीने पेट में और बाद में 10-15 साल बड़े करने में क्या लाभ होगा। सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता के प्रति यही कर सकते हैं कि ऑलरेडी भक्त हैं और अगर आप शुद्ध हो जाते हैं तो क्या अभी समय केवल माता पिता बल्कि कई जनरेशन को उद्धार कर सकते हैं। जब विष्णु संन्यास लेते हैं तो जगन्नाथ मिश्र सची माता बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन बाकी लोग उनको समझाते हैं, निमाई समझाते हैं, मात्र कुल पितृ कुल दुई कई लो उद्धार। तो संन्यास लेकर बहुत अच्छा किया इसने, मात्र कुल पितृ कुल दोनों का उद्धार किया। राधाना स्वयं महाराज ईश्वरपुरी की कहानी बता रहे थे, निशांत के समय कल बताऊंगा वो बहुत डिटेल में, जैसे महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिल गए। उसके दौरान जब वो गया में ईश्वरपुरी से मिलते हैं तो ईश्वरपुरी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने से जिस व्यक्ति के नाम से पिंडदान किया उसी का उद्धार हो सकता है, लेकिन आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने से ही लाखों पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। एक वैष्णव के दर्शन से ही सब पाप दूर हो जाते हैं, गंगा स्नान से भी ज्यादा विष्णु के चरणों का आश्रय। हम सब रूपा जी बोलते हैं कि द ड्यूटी ऑफ इस्कॉन डिवोटीज टू बिकम सच डिवोटीज दैट जस्ट बाय देयर एसोसिएशन अदर्स विल गो बैक टू गॉड विदाउट गिविंग देयर नॉलेज। आपको रूपा जी के फॉलोअर्स को ऐसा वैष्णव बनना चाहिए कि आपके संघ के प्रभाव से दूसरे लोग बैक टू गॉड चले जाएंगे, पता ही नहीं चले। रूपा ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ जय प्रभु पाते हैं, क्योंकि हम सब भी उनके सच्चे अनुयायी बने शुद्ध बनकर। अगर आप शुद्ध हैं तो दूसरों को मदद कर सकते हैं, और शुद्ध बनने का तरीका है श्री प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। विशेष करके हर समय जाना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। ऐसे शिष्य भी पुत्र की तरह होते हैं, गुरु को पिता मानते हैं और शिष्य को पुत्र या पुत्री मानते हैं। तो शिष्य जो है अगर योग्य नहीं बनता, अगर शिष्य ठीक से परंपरा को गुरु को फॉलो नहीं करता तो शिष्य भी बेकार है। अद्वैत आचार्य के 6 पुत्र थे, उसमें 3 शुद्ध भक्त हो गए और 3 मायावादी हो गए। अगर आप महाविष्णु भी हो तो भी गारंटी नहीं है कि पुत्र भक्त होंगे। चाणक्य पंडित का श्लोक प्रभु का ये कोट करते हैं,
को अर्थ पुत्रे न जाते न यो न विद्वान न धार्मिक काने न चक्षुष किंवा चक्षु पीड़ा एव केवलम। जो पुत्र न तो विद्वान है या महान है और न भक्त है, ऐसा क्या लाभ।
ऐसा पुत्र जो है वो अंधी आंख के समान है। अंधी आंखें व्यक्ति की आंखें दिखाई नहीं पड़ते, वो आंखें लगता है वहां पे और वो दर्द देती है उस व्यक्ति को जिसने उसकी बात है लेकिन देख नहीं सकते, ऐसा क्या लाभ। ये तो बहुत अच्छा व्हीकल है लेकिन चल नहीं सकता, ऐसा क्या लाभ। ऐसे अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनता उसका भी जीवन बेकार है और माता पिता के लिए भी एक बर्डन बन जाता है। इसलिए हे तुच्छ देवताओं, अगर तुमको अपने हीरोइज्म में अपनी शक्ति में श्रद्धा है, अगर आपको हृदय में थोड़ा सब्र है और अगर तुम इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक नहीं हो, थोड़ी देर रुको, एक क्षण भागो मत। देवताओं को बोल रहे हैं अगर तुम हीरो हो तो अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करो, और क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ना चाहते, अपने लड़ाई अपने युद्ध अपने जीवन को खोने से डर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं जैसे तुम हो। तुम तो मेरे सैनिकों को मार रहे हो, जो भाग रहे हैं उनको भी मार रहे हो, लेकिन मैं तुमको चॉइस दे रहा हूँ, जैसे तुम हीरो हो सामने खड़े रहो या हम लोग जाओ या यहाँ भी जाना है जाओ, या फिर तुम भाग रहे हो तो मैं छोड़ दूंगा। इफ यू हैव फेथ इन योर हीरोइज्म प्लीज स्टैंड बिफोर मी, आप मेरे पास खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और ऐसा कहता वृत्रासुर जोर से गरजने लगा। वृत्रासुर का साइज इतना बड़ा था, सोची जो लड़ता था हाथ में 200-300 लोगों को ले जाता, और मरते समय भी उसने पूरा प्लान किया, मरते समय भी घटोत्कच था, मरते समय उसने कई लोग भी घटोत्कच। वृत्रासुर सिमिलर है, दोनों राक्षस के पुत्र हैं, राक्षसनी के पुत्र हैं भीमा और हिडिम, लेकिन दोनों वैष्णव है, वैष्णव को बाहर से नहीं जज कर सकते। अभी कुछ 11 मार्च को रविवार के दिन नारायण स्वामी महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि बाहर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृत्रासुर देवताओं के साथ लड़ रहे हैं और देवता भी वैष्णव हैं, देवताओं को मार रहे हैं और देवताओं के साथ भगवान विष्णु का दिया हुआ अस्त्र है वज्र, और वृत्रासुर उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और देवता भी पसंद कर रहे हैं, दोनों दूसरे को मार रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, जैसे कई बार हम जज करते हैं वैष्णव को बाहर से, तो करना भी पड़ता है, जो मैनेजर्स में उनको जज करना पड़ता है या दीक्षा के विरुद्ध जज करते हैं, कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है, कौन योग्य है कि नहीं है, तो हम अपराध कर बैठते हैं लेकिन बाहर से जज करते हैं, इसका तिलक कैसा है, कंट्री वाला कैसे है, टाइम पे आ रहे कि नहीं आ रहे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाराज से पूछा था प्रश्न, बोले कि हमको जो भी व्यक्ति जज कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि मन में कि हमारी जजमेंट गलत भी हो सकती है। जैसे उदाहरण दिया वृत्रासुर से, लेकिन जो इंद्र डिसाइड कर रहे हैं शिक्षा के लिए, इंद्र तो वृत्रासुर का नाम कभी नहीं दिया, वृत्रासुर का वृत्रासुर बैठे हुआ बन गया, क्योंकि वृत्रासुर भगवान की प्रेरणा से कार्य करें लाइबिलिटी बन। जैसे प्रहलाद का जन्म भी असुर परिवार में हुआ, बलि महाराज भी असुर परिवार में, हनुमान जी का जन्म मानव परिवार में, सुदामा गरीब परिवार में, विजय एक शुद्ध परिवार में, हरिदास ठाकुर को जीवन जो वर्णाश्रम से भी नीचे है ऐसे परिवार में है। प्रभुपाद जी के मिशन में कई लोग अमेरिका में जन्म लिए, तो नित्य पार्षद है भगवान के, ऐसे लगता है कि वो अमेरिकन फैमिली में है, लेकिन पहले उसका मैंने से पहले वो 4 नियम नहीं पालन करते हैं, नहीं जान सकते हैं तो भगवान के अन्य से समझना मुश्किल है। वासुदेव नहीं कर सकते किसी को, वासुदेव नहीं की अफ्रॉल सिर्फ एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी का फोटो देखो लीलामृत में जब वो पहले थे तो ऐसे लगता नहीं कि कोई महाभागवत भक्त है, बिजनेस मैन की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिट बिजनेस लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली हर व्यक्ति कृष्ण का दास है, इसलिए किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के प्रति अपराध जब कृष्ण वापस नहीं आते। जब देवताओं ने ये यकीन बताया, जब विश्वासुर जोर से गरजे तो सब लोग बेहोश हो गए, युद्ध में कुछ डर के सब बेहोश हो गए। ऐसे ही स्वयंवर में जब भगवान राम ने सीता का धनुष, सीता के विवाह के लिए शिवजी के धनुष को तोड़ा, उस विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण और जनक महाराज ये चार लोगों को छोड़कर सब बेहोश हो गए। धनुष आज भी है, उसका कुछ भाग है, एक पत्थर के रूप में है। अब जनकपुरी कभी जाएंगे तो नेपाल में है तो वहां पर एक पत्थर है, थोड़ा वो धनुष के बाहर। सारे देवताओं ने जब आवाज को सुना तो बेहोश हो गए और थोड़ी देर बाद उठे, तब वृत्रासुर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर देवताओं को आक्रमण करने लगे। जैसे कोई पागल हाथी किसी जंगल से गुजरता है ऐसे वृत्रासुर जब चलते थे तो कई देवताओं को अपने पैरों से कुचलते हुए जा रहे थे, इतना उनका कद था। और इंद्र क्रोधित होकर अपनी एक गदा का अपनी गदा को पूरे शक्ति के साथ वृत्रासुर को फेंकते हैं, वृत्रासुर मुस्कुराते हुए उसको बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं, कैच पकड़ लेते, कुछ होता ही नहीं। तब वृत्रासुर वही गदा को लेकर इंद्र के हाथी के ऊपर फेंकते हैं और इतनी जोर से आवाज आती है और इंद्र के सैनिक और वृत्रासुर के सैनिक दोनों बोलते हैं वृत्रासुर को की जय। इवन इंद्र के सैनिक भी खुश हो जाते हैं उसकी शक्ति को देखकर। और वो हाथी बेचारा दूर 14 गज यानी करीब करीब 40 फीट पीछे जाके गिर जाता है और अभी से इंद्र भी गिर जाता है क्योंकि इंद्र उसके ऊपर सवार होता है, दोनों गिर पड़ते हैं। तब इंद्र डर जाते हैं और इधर उधर घबराए हुए देखने लगते हैं। तब वृत्रासुर उनके हाथ में गदा फिर से होती है लेकिन इंद्र को मारते नहीं है, वृत्रासुर उनको उपदेश करने लगते हैं। वृत्रासुर कहते हैं कि तुमने मेरे भाई विश्वरूप को मारा। जो भी कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण का वध करता है जिसने मेरे गुरु का वध किया है और मेरे भाई का वध किया है वो इंद्र आज मेरे सामने खड़ा है। हे इंद्र तुम अधम हो, अपने स्वार्थ के लिए तुमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि किसका वध करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारे हृदय को बीन दूंगा और मेरे भाई के प्रति जो मेरा ऋण है वो मैं चुका सकूंगा। सिर्फ एक तुच्छ चीज स्वर्गलोक के राज्य को बनाए रखने के लिए तुमने मेरे बड़े भाई विश्वरूप को मारा जो कि निष्पाप था, योग्य था और लीनी बहुत, तुमने उसको अपने हेड प्रीस्ट के रूप में मुख्य पुजारी के रूप में अपॉइंट किया था यज्ञ करने के लिए, और क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में बाधा आ रही थी इसलिए तुम उसका वध कर दिया। इंद्र तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है, तुम बेशरम हो, तुम लज्जा से हीन हो, तुम्हारे अंदर कोई दया की भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर अपने स्वयं की ऊपर तुम कलंक बन गए हो। इन सब गुणों से नष्ट होकर अब तुम राक्षसों द्वारा भी कंडेम्ड हो, जो नरभक्षी राक्षस होते हैं उससे भी अधम हो। अब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारा अंत कर दूंगा और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर अग्नि में डालने के लायक नहीं होगा, तुम्हारे शरीर को सिर्फ दिव्य खाएंगे और न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे सारे देवता अगर मेरे पर आक्रमण करने हैं मैं उनका भी अंत कर दूंगा। अभी मैं यज्ञ करूंगा उसमें भैरव और जितने भी भूत प्रेत के लीडर हैं सबको मिलाया जाएगा और तुम सबको अर्पण कर लिया जाएगा। लेकिन मित्रासुर बोल रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय कर्तव्य है, जब भी दो क्षत्रिय मिलते हैं तो एक दूसरे को इस तरह से स्वागत करते हैं, ये मूर्ख तुम कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ खड़े रहो, अब तुमको अंत करके हम लोग भेज दूंगा। और दूसरा भी इस तरह से उनको दराती प्रतिग्रहण है। हम महाभारत में पढ़ोगे जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है, जब एक बार भीष्म का युद्ध होता है, वो भी बहुत बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से एक जैसे तड़का लगाने से पहले घी को थोड़ा गर्म किया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह गर्म गर्म शब्द बोलते हैं। लेकिन मित्रासुर डिटैच थे, वो बोल रहे थे क्योंकि क्षत्रिय का नियम है, लेकिन जानते भी थे कि मैं हारने वाला हूँ, इसलिए बोले इंद्र अगर ये युद्ध में तुम्हारे पास वज्र है, मुझे मालूम है वो वज्र जो भगवान विष्णु के द्वारा शक्ति प्रदान किया हुआ है, अगर वो वज्र से तुम मेरे सिर को काटते हो और मेरे सैनिकों को काटते हो हे इंद्र, तब मैं अपने शरीर को युद्धों की सेवा में अर्पण करने में बहुत प्रसन्न होऊंगा, इस तरह से मैं सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे नारद मुनि जैसे महान भक्तों की चरणों की धूल अपने सिर को प्राप्त हो। ये रियल कॉन्शियसनेस है। मित्रासुर लड़ रहे थे इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा थी। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हुए, नेपोलियन, हिटलर, इन सबके चरित्र को भागवत में नहीं वर्णन किया था। किया जाता है तो इस तरह से कि कंडेम करते हुए, क्योंकि ये सब युद्ध स्वार्थ पर आधारित थे। क्योंकि मित्रासुर युद्ध कर भी रहे हैं ऐसा भगवान की योजना का भाग है। श्री बहुत सुंदर तर्पण देते हैं कि मित्रासुर की क्या अभिलाषा है। वो बोल रहे हैं कि नारद मुनि जैसे भक्तों के चरणों की धूल मुझे सिर पर प्राप्त हो, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। श्रेताओं का ये नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को कोट करते हैं, इच्छाएं गोसाई जाए मूरी तारदास कदरेणु मोर संशयग्रास, कि मेरे लिए ये जो श्री गोस्वामी है उनकी जो धूल है वो मेरे लिए पंचग्रास है, फाइव काइंड ऑफ फूड, ये मेरे सबसे बड़ा भोजन है। भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ये तीनों सबसे बलशाली चीज है, भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल और भक्तों का रेमिनेंट प्रसाद। ऐसे तो कहते वो अपने कहानी में बताते हैं, जब वो एयरप्लेन में जा रहे थे श्री प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद जी के असिस्टेंट के रूप में, प्रभुपाद जी बोले मुझे कुछ प्रसाद चाहिए। प्रभुपाद जी काफी अनप्रेडिक्टेबल नेचर था, कभी कभी अचानक उन्होंने प्रसाद चाहिए, जो प्रसाद लिया नहीं था लेकिन थोड़ा सा कुछ टॉप प्राइस था, मुरी मुरी बोलते हैं मुरी कुरमुरा, मैं तो उन्हें मुरी बोलते हैं। प्रभु भाई बड़े खुशी से खाने लगे, थोड़ा खाने के बाद बैग खुला ही था प्रभु जी के हाथ में, सुबह से प्रभु के हाथ में, और एक एयर होस्टेस आई, बिना कुछ बोले उसने उसे कुरमुरा में हाथ डाल के खा ली। कुछ पता नहीं था कि डिवोशनल सर्विस क्या होता है, आप जानते हैं एयर होस्टेस को क्या कल्चर मालूम होता है, होस्टेस जनरली कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता, लेकिन पता नहीं किसको प्रेरणा उसने खा ली। और तो कुछ स्पीकिंग भी नहीं किया गया था, मैं तो सीखते भगवदगीता कोर्स भी नहीं अटेंड किया था, गुरुवार कार्यक्रम में भी नहीं, उसको पता नहीं कि श्रद्धा हुई रेमनेंट ले ली रोपा जी का, और क्योंकि उसने रेमनेंट लिया व्यवस्थित, ऑब्वियसली हर जीव कृष्ण का दास है इसलिए स्वाभाविक है, और प्रभु का रेमनेंट का प्रेम ऐसे जागृत हुआ तो आकर पूछने लगी स्वामी कुछ चाहिए थे। जनरली एयरप्लेन्स में आप जानते हैं सब अच्छा भोजन नहीं मिलता, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए कुछ फ्रूट्स या दूध कुछ लेकर आए, प्रभुपाद जी हॉट मिल्क मिल्क लेकर आए प्रभुपाद। ये कहानी मैंने बुक में पढ़ी लेकिन कल मेरे को किसी भक्त ने दूसरी कहानी बताई, ये शुद्ध जी प्रभु ने बताई, वो बताने लगे कि कई वर्ष बाद वो किसी एक गांव में गए और वहां पर उन्होंने उसी को देखा और वो जप कर रही थी, वैष्णवी बन गई, उस समय नहीं बनी लेकिन कई वर्ष बाद प्रभुपाद वैष्णवों के रेमिनेंट्स उसके लिए उत्सुक होना चाहिए। कुछ प्रभुपाद जी धरती पर भी नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक है वो भी उनका महत्वपूर्ण, हर एक शब्द जो भागवतम और चैतन्य चरितामृत सीता में है और प्रभुपाद जी के मुख से निकला है। आपको कहानी मालूम है कि जब श्री प्रभुपाद जी लंदन में थे तो एक खरगोश था, खरगोश जो दौड़ते ही आ रहा था और श्री प्रभुपाद के पास आकर भक्त को भगा देते दो तीन बार, और अंत में पास में आ गया बिल्कुल। श्री प्रभुपाद अपने चरण उनके सिर के ऊपर रखे और अगले दिन भक्तों ने बताया प्रभुपाद जी को उसने प्राण त्याग दिए। श्री प्रभुपाद जी को पता चला, बोले मैं जानता हूँ वो महायोगी था लेकिन भक्त नहीं था, विथे उसे एक शुद्ध भक्त के चरणों की धूल चाहिए। तो नम्रता के कारण प्रभुपाद जी कभी कहते नहीं लेकिन कभी कभी साफ प्रकट हो जाता है कि प्रभुपाद के सुनाम शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी बोलते थे, जब भक्तों ने बोला कि हमारे क्या सुकृति थी, हमारे क्या पायस शरीर थे कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में, चेतना के मिशन में आए, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आपकी वो सुकृति नहीं थी, मैंने बनाई सुकृति। प्रभुपाद जी कभी कभी एकदम साफ प्रकट करते थे। एक बार बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि कोई एक महान व्यक्ति आएंगे जो कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे, फिर हंसते बोले शायद नहीं वो व्यक्ति। प्रभुपाद जी परबट में लिखते हैं कई बार कि जब 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 कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो कोई लोग निंदा करते हैं, जब हाथी जा रहा होता है तो कोई कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, चारावन चलता रहता है। निंदा है कि बोल रहे हैं प्रचार कर रहा हूँ, फिर मेरे कोई गुरु भाई निंदा कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कभी कभी अपने बता देते अपने बारे में, इनकी क्रियाओं से हम जान सकते हैं उन्होंने महान प्रचार किया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैष्णव ऑलवेज द डिजायर द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द प्रीवियस आचार्यस एंड वैष्णवस, पूर्वज आचार्यों की धूलि। ठीक है ना महाप्रभु, कल प्रवचन में, कल सवेरे प्रवचन में राधा स्वयं भारत बता रहे थे, कल शाम को उन्होंने प्रवचन बताया था कि महाप्रभु कुमार हट गए जो कि ईश्वरपुरी का जन्म स्थान था, और वहां की धूल में लोटने लगे, कुमार हट्टा बोलकर ये मेरे गुरुदेव की प्रकट स्थली है। और वहां से उन्होंने धूल को लिया और अपने छोटे से कपड़े में बांध के रखा, सन्यासी को जनरली डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, उन्होंने धूल को संभाल के रखा, रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। और यही नहीं, अभी परंपरा हो गई, इतने सारे वैष्णव आए, इतने सारे वैष्णव ने वहां से धूल ली कि अब वहां पर एक कुंड हो गया, कितने डॉग बोलते पानी से भरा हुआ है। महापुरुष ने लिखा था कालिदास की कहानी सबको मालूम है, कालिदास वैष्णव का जूठा खाते थे, उनके महान ब्राह्मण परिवार से थे, और जरूर ठाकुर के घर में जाते, जरूर ठाकुर तो शूद्र थे, उनको सुंदर ऑफरिंग देते थे, सुंदर लेकिन ऐसे जिसमें रंजन से मिल सके, उनको आम देते थे। गुरु ठाकुर बोलते थे आप तो ब्राह्मण हो, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। कालिदास श्लोक बताते कि नमे भक्त चतुर्वेदी, मैं भक्त से बच्चे प्रिय, कोई चतुर्वेदी भी है अगर मेरा भक्त नहीं है मेरे को बिल्कुल प्रिय नहीं है, और कोई शपथ परिवार से है, कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार से है, लेकिन अगर मेरा भक्त है तो मेरे को बहुत प्रिय है। ये सुनकर जरूर ठाकुर बोले श्लोक तो सही है बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं उसके काबिल नहीं। और फिर आम देने के बाद कालिदास छुप जाते झाड़ियों में, जरूर ठाकुर भगवान को भोग लगा कर दिया, वो आम को छिलके को फेंकने फेंकते, उसके बाद कालिदास आकर उनके चरणों की धूल लेते, उनके पैरों के निशान, और फिर उनकी रमेंद्र को स्वीकार करते, और खाली एक नहीं जितने बंगाल के वैष्णव थे सबका रमेंस लेते थे। और इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर में गए एक दिन, वही अपने चरणों को उनके चरणों को धोया जाता था गोविंद के द्वारा, और कालिदास अपने हाथों को चरणों के नीचे रखकर एक अंजलि, दूसरी अंजलि, तीन अंजलि, तीन बार स्वीकार करते तो महाप्रभु को बस, क्योंकि उनको वैष्णवों के जूठन में इतनी श्रद्धा थी। तत्पश्चात महाप्रभु गंभीरा में जाते हैं और प्रसाद ले रहे होते हैं, और सुखी के बाहर देखते हैं तो कालिदास बैठे हुए हैं, तो महाप्रभु उनकी ओर देखते हैं और कालिदास महाप्रभु की ओर देखते हैं, और दोनों समझ जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो महाप्रभु बोलते हैं गोविंद मेरा सारा जो उच्चिष्ट है वो सब आप कालिदास को दे दो, तो नहीं है वैष्णव के धूल के। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर कि वृत्रासुर वो जानते थे कि मैं मरने वाला लड़ाई में, क्योंकि भगवान विष्णु की इच्छा है, वो जानते थे कि मेरी मृत्यु होनी है और मृत्यु के तैयार थे। उनको ये भी मालूम था कि भगवान के धाम जा रहे हैं, एक ही करके देख रहे इस्कॉन के बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं। समय आ रहा है कि प्रभुपाद के शिष्यों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हमें संघ मिलकर उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। 2 साल पहले श्री भक्ति की गोस्वामी महाराज चले गए, उसे कुछ साल पहले श्री कुमार कृष्ण गोस्वामी महाराज चले गए, मेरे गुरु भाई सब कृष्ण प्रभु पिछले साल चले गए, और अभी एक और सीनियर डिवोटी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य उसके वादा कुंड बताइए सब जानते होंगे, उनको भी ट्यूमर हो गया, डॉक्टर ने उनका कुछ नहीं कह सकते, अभी वृंदावन में शायद वो कुछ हफ्ते रह पाएंगे। मैं वृंदावन में था तो मिला नहीं, कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी, उसको यही बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम से कृष्ण राधा गोपी मैं भक्तों से बहुत प्रेम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनका नाम राधा कुंड रखा है। एक दिन डॉक्टर्स बोल रहे थे कि उनके पैर बहुत काले हो रहे हैं, शायद वो कुछ घंटे ही रह पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं राधा कुंड में जाना चाहता हूँ बेहद प्रयास करने के लिए। भगवान की दया से राधा कुंड में गए और उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि वो राधा कुंड वो राधा कुंड में ही है और वहां पर भगवान की कृपा के लिए इंतजार कर रहे। डॉक्टर से ऐसी चेतना में शरीर त्यागना चाहिए, तो कृष्ण मैं आपका इधर ध्यान में ले जाए या तो अपने धाम में ले जाए या दूसरे इसको सेंटर में ले जाए, यहाँ पर इसको उनके भक्त हूँ, यहाँ पर कीर्तन हो, यहाँ पर कथा हो, मैं समझ जाऊंगा। महाराज सिंह महाराज उनसे 3 घंटे बातचीत की, उन्होंने उनके लिए मीरा रोड हॉस्पिटल में व्यवस्था की, और जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब कोई चांस नहीं बचने का, तो महाराज ने उनके डॉक्टर्स का इंतजाम किया, उनको ट्रेन पर वृंदावन जाने की व्यवस्था कराई और उनके साथ डॉक्टर्स भेजे। 3 घंटे बातचीत कर रहे थे महाराज सिंह, कह रहे थे कि बस हम आप भगवान के धाम जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैक टू गॉड, सब कुछ भूल गए। ये भी बोले कि अगर आपके मन में अगर कोई भक्तों के प्रति गलत धारणा तो उसको त्याग दो, क्योंकि कोई भी भक्त हो तो हम साथ में रहते हैं तो थोड़ा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही है, तो बहुत कम जगह होती है जो कोई कोई गलत फहमी से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बर्तन साथ में उनकी आवाज आती है, क्योंकि आपसे भावना को त्याग दो भक्तों के बारे में जो भी, क्योंकि सभी भक्त हैं, सभी कृष्ण के दास हैं और सब में अच्छाई दिखनी चाहिए, सब कृष्ण की सेवा करें, यही वंडरफुल चीज है, तो किसी आश्रम में हो कैसे उनका व्यवहार हो कैसे उनका बोलने का ढंग हो। तो मैं उनसे कह रहे थे अभी ये विचार मत रखें, अगर ये विचार मृत्यु के समय रहे तो फिर हम कुछ नहीं हो सकते, मृत्यु के समय चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी और आप भी सब ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम उस लेवल पर तो है नहीं कि सबको हम सबसे एकदम अच्छा संबंध हो, सबसे कम से कम किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये व्यक्ति से मेरा उतना गहरा संबंध है लेकिन फिर भी ये मेरे प्रभु है, उनका दास वापिस मित्र से प्रभु यही बोलते हैं कि भगवान ने आपके दास 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 के दास में सबसे बड़ी चेतना देगी दास के दास में। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे बताते हैं कि दिस इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन इट इज अचीव बाय द ग्रेस ऑफ अ वैष्णव, एक वैष्णव की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे श्री छोटे समय वैष्णव है गुरु महाराज को और भी अच्छा, जैसे कृष्ण प्रभु जी के समय उन्होंने देह त्याग किया, उनका आखिरी समय आया हॉस्पिटल में, उनका बीपी बहुत कम हो गया, तब आपने उनसे पूछा कहाँ पे शरीर त्याग करना चाहते हो, घर में जाना चाहते हो या हॉस्पिटल में या मंदिर में, मेरे एक ही घर है राधा गोपीनाथ मंदिर 7K मुंशी मार्ग है, बस मैं भी जाना चाहता हूँ, तो वहां पर उनको चैतन्य शिवदान भक्त पढ़ के सुनाए, मैंने भी उनको चैतन्य मंगल पढ़ के सुनाए, और भी पूरे समय श्रवण कीर्तन लगे थे, जो कुछ कीर्तन कर रहे थे, और महाराज ने बताया था कि जब एकदम समय आ जाए जाने का तो मुझे बुलाना, ये बताना मुश्किल होता है क्योंकि मुझे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई डॉक्टर। गिरिराज प्रभु अभी हम ट्रेन में मेरे साथ आ रहे थे वृंदावन से परसों, बता रहे थे कि एक दिन मैं आ रहा था घर से और सोचा था भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अभी श्री कृष्ण प्रभु को जाना ही अच्छा है क्योंकि अद्वैत आचार्य का दिन है और साथ साथ इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, संघर्ष है, तो उसी को जाना ही है। तो उस दिन मैं गया, एक कुछ समय के बाद में ड्यूटी देखा कम है, मैं तुरंत महाराज के पास गया। बहुत महाराज प्रणाम किया, मैंने बोला कि अभी जाने का समय है। इससे पहले कि मैं प्रणाम कर उठा महाराज निकल चुके थे। महाराज वहां पहुंचे, महाराज ने उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। हमारे के पहुंचने के बाद 5 बार उसने श्वास लिया देते। महाराज गोविंद सिंह को बोल रहे थे कि ये इतनी महान व्यक्ति है, डू नॉट इवन एक्सपेक्ट, डू नॉट इवन एस्पायर फॉर सच अ डेथ। ऐसी मृत्यु प्राप्त होना ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात, एक सोचना या आशा भी करना एक ज्यादा ही है एक्सपेक्टेशन। और वो ऐसे डिवोटी को कि कोई बड़े टीचर नहीं थे, कोई बड़े लीडर नहीं थे, कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, जब उनके अंदर सिंसियरिटी थी, सच्चे दिल से सेवा करना चाहते तो भगवान कहते महान गति थी। जो कि क्योंकि हरिदास ठाकुर के समय भक्त थे, कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु थे। वैष्णव का स्पेशल लिखते हैं, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ अ वैष्णव दैट वन कैन अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ दैट इज वाटर, विष्णु की कृपा से। इसे चाणक्य पंडित सॉरी इसलिए एक श्लोक बताया गया, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तारा पाई छिकेगा। वैष्णव की सेवा को छोड़कर किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं, मनस विनाम पाद रजत प्रपत्ते आई शैल रिसीव द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। मैं महान भक्तों की चरणों की धूलि को प्राप्त करूंगा। मनस्वी नाम का अर्थ क्या है? मन मुझे उच्च विचार रखते हैं, जो कृष्ण के बारे में सोचते हैं। मनस्वी तपस्वी जो कृष्ण के विचारों में लगे हैं वो मनस्वी कहा गया। दे आर ऑलवेज पीसफुल एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण, वो शांत रहते हैं और कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। मनस्वी नाम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच डिवोटी इज नारद मुनि। If one receives the dust of the lotus feet of Manasvi, a great devotee, he certainly returns back home, back to God. Jai. Narad Muni ki jai. Narad Muni best example. Narad Muni ke parampara mein koi bhakt hain, unke charanon ki dhool agar praapt ho jaye, to back to Bharat Vyas. Isliye galat nahi hai jaise bhakti ki ichha adhik charanon ko sparsh karna, lekin forceful nahi hona chahiye. Abhi koi bhi vaishnav ja rahe hain, samjhe Maharaj ja rahe hain, to chalenge. तो चलने के बाद तो आगे जाएंगे तो धूल तो वही रहेगी ना, लेकिन कोई एम्बेरसिंग सिचुएशन नहीं है, न तुमको कोई बुरा लगेगा ना हमें कोई लॉस, हमें लॉस प्रॉफिट भी हो जाएगा। जैसे बुद्धिमता से कलिया कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि सम और अदर वी मस्ट गेट दिस डस्ट ऑफ वैष्णव, वैष्णव चरण की धूल। वैष्णव चरण की धूल का मतलब ये भी है कि उनके आदेश का पालन करना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। हे देवताओं के राजा इंद्र, मैं आपका शत्रु, आपके सामने खड़ा हूँ, आपके हाथ में वज्र है, क्यों नहीं फेंकते हो मेरे ऊपर, जल्दी फेंको। आपने भी गदा फेंकी थी वो मैंने बाएं हाथ से पकड़ ली, बेकार हो गई। लेकिन तुम्हारी गदा ऐसी थी, गदा फेंकना ऐसा था कि इसे कंजूस आदमी से पैसा मांगना। ऋषि भी हंस रहे हैं क्योंकि वो कलेक्शन के लिए जाते हैं उनको। ये कंजूस व्यक्ति को कितना ही मांगो कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही आपने एक गदा फेंकी, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन ये वज्र जो है ये बेकार नहीं होगा, इससे मेरा अंत होने वाला है। क्यों? उनको मालूम था, रुपयासुर का पूरे प्लान मालूम था कि बदीसी के पास जा रहे हैं, ये विष्णु की आज्ञा पे जा रहे हैं, वज्र बना रहे हैं मुझे मारने के लिए। फिर वो निडर थी, निडर थी। ये बोलते हैं कि इंद्र के मन में डाउट था, इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, उनकी आज्ञा पर उन्होंने अस्त्र हाथ में लिया। भगवान विष्णु ने बोला उनको कि ये वज्र से वृत्रासुर का वध होगा, फिर भी इंद्र को पूरा विश्वास नहीं था, और वृत्रासुर जिसका वध किया जा रहा है उसको विश्वास था। ये है डिवोशनल सर्विस में अलग अलग स्टेजेस, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कोमल श्रद्धा जार। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? इस श्रद्धा बहुत कोमल है, सॉफ्ट प्लायबल है। कभी भी जैसे छोटे से पौधे होते हैं, हवा चलती है तो पौधे गिर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो है वो नहीं गिरते। हमें श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। श्रद्धा शब्द विश्वास से सुदृढ़ निश्चय, उसमें भक्ति पहला सर्वोत्तम है। श्रद्धा विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति सब कुछ मिल जाएगा मुझे। कृष्ण भक्ति का फेथ को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। धृतराष्ट्र प्रभु में ज्यादा फेथ था, इसलिए ही वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ थंडरबोल्ट्स बीइंग रिलीज। तो वेट कर रहे थे। इन इफेक्ट यू आर सेलिंग, इफ यू वॉन्ट टू किल मी सिंस आई एम योर एनिमी, टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू किल मी। आप मारना चाहते मारो, यू विल गेन विक्ट्री एंड आई विल गो बैक टू गॉड हेड। आप दुनिया में विजय बनना, इंद्र बने रहना और मैं जाऊंगा भगवान के धाम। दोनों को समान लाभ होगा, तुरंत करो। तो समान तो नहीं, लेकिन दोनों की समान का मतलब दोनों की इच्छाएं पूरी होंगी। इंद्र की इच्छा थी कि मैं इंद्र बना रहा हूँ, ऋतुराष्ट्र की इच्छा थी मैं जल्दी से भगवान के धाम। ये इच्छा कल्टिवेट करना अच्छा है कि भगवान के धाम जाऊं। हालांकि सही में इस्कॉन मूवमेंट में रहकर सेवा करना, भगवान धाम पे जाना बराबर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो कई बोलते हमारे टेम्पल जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल डिजायर से घिरे हुए, थोड़ी सोचना अच्छा है कि भगवान के धाम जल्दी निकले। इसलिए तो क्या होगा, हम हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है लेकिन पास मटेरियल वर्ल्ड भी है, साइंस के बाहर मटेरियल वर्ल्ड है, इधर मटेरियल वर्ल्ड है, अंदर भी आ जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए ज्यादा अच्छा सोचना कि चीजें बाहर निकले, लेकिन उतनी एडवांस नहीं है कि निश्चित करो। हमें भगवान के धाम जाने की योग्यता मिल जानी चाहिए और जाना नहीं चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए कि अगर मृत्यु हो जाए तो भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए क्योंकि टीचिंग करना ही है। जब सब भीम चले जाएंगे तब हम चले जाएंगे, वो कभी होगा नहीं। महाराज जोड़े थे, पुणे में समय प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रहा था, तो महाराज आए और प्रॉब्लम से कुछ हमारा कुछ भक्त में डिस्कस कर रहे थे, मैं भी था। तुम्हारे बोले देखो प्रॉब्लम अंत कभी होंगे, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो कोई लीडर हो, प्रॉब्लम अंत नहीं होंगे। जब महाविष्णु श्वास अंदर लेंगे तो प्रॉब्लम अंत हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाए, और फिर जब वो बाहर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। लिटरल वाले प्रॉब्लम सही, तो किसी का दोष नहीं है, कितने भी सिंसियर लीडर हो, काउंसिलर हो, गुरु हो, जीवीसी हो, प्रॉब्लम सही। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना ही नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है। समस्या क्या है, हम इस दुनिया में भोग करना चाहते। हे इंद्र जल्दी करो, जल्दी मारो मुझे, तुम्हारे हाथ में वज्र है और दधीची की तपस्याओं से बना है, इसमें भगवान विष्णु की शक्ति है, क्योंकि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, भगवान विष्णु की आज्ञा से इसमें कोई शंका नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु ने आपकी तरफ से लड़ने का निश्चय किया है, इसलिए आपके लिए विजय है, ऐश्वर्य है और सारे गुण है। विक्ट्री ऑपुलेंस एंड ऑल गुड क्वालिटीज आर अश्योर्ड, सब कुछ है, सफलता और विजय ऐश्वर्य सब कुछ है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धन विजय, क्योंकि हालांकि इंद्र शुद्ध नहीं है, विष्णु उनके सही से लड़ रहे हैं, इसलिए विजय उनकी है। भगवान की आज्ञा से इंद्र ने वज्र बनाया है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृत्रासुर ने इंद्र को यह आश्वासन दिलाया कि ये वज्र जो है ये इनविंसिबल है। हाँ, हमेशा सफल होगा, तो कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी उपयोग करो, मैं जल्दी भगवान के धाम लौटना चाहता हूँ। इंद्र इंद्र तुम्हें सफलता मिलेगी, स्वर्ग का भोग मिलेगा। श्रोता जी बोलते हैं इंद्र वुड गेन विक्ट्री एंड एंजॉय द हेवनली प्लैनेट्स रिमेनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड फॉर बर्थ एंड डेथ। ये क्या एंजॉयमेंट है, ये बार बार जन्म मृत्यु का आनंद लेना। पार्थिव वाले प्रभु जी बार बार जन्म मृत्यु का आनंद लेते रहे। क्या आनंद है, इसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अमृत का आस्वादन मिल गया है, उसको स्वर्ग का सुख ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई वॉमिट वोमिट, जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है किसी बर्तन में, हॉस्पिटल में जाओ देखते हैं उल्टी की हुई, तो वो देखकर किसको टेस्ट जागृत होगा पीने के लिए, प्यासा भी होगा तो भी उन्हें के मिटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही रिफ्यूज 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 एनी अच्छा सर। भाई जी एक बार जा रहे थे अमेरिका में, जैसे कचरे के डिब्बे होते हैं वो भी बहुत अच्छे है दिखने में होते हैं बाहर से, मालूम नहीं पड़ेगा कचरे का डिब्बे लिखा होता है तो वो गार्बेज है यहाँ पे कचरा डालिए लिखते हैं कूड़ा दान। तो प्रभुभा जी बोले ये पूरे बहुत ही जगह को इसी में डाल देना है नहीं बकरे लेवल की जगह, जितना आपको लगने लगेगा कि दुनिया में कोई वैल्यू है नहीं उतना भगवान के करीब आ रहे हैं, जितना आपको लगेगा कि नहीं है शास्त्रों में लिखा वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा रियलाइजेशन है कि कुछ है वैल्यू, तो फिर इसका मतलब कुछ भी जानना पड़ेगा। थरोली डिस्गस्टेड विद मटीरियल वर्ल्ड निवृत्त परिचय जो जो मटीरियल वर्ल्ड से एकदम निवृत्त हो गए जो तंग आ गए वो व्यक्ति को कृष्ण के चरण की प्राप्ति है। रघुनाथ दास गोस्वामी थे सबको त्याग दिया, सुंदर पत्नी इतना बड़ा घर ऐश्वर्य इंद्र के समान, फिर वे दौड़ने लगे चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए। जिसको महाप्रभु कृपा मिल जाती है तो वो व्यक्ति के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहती, नहीं तो हालांकि माया माया बंधन का कारण है वो इतनी अट्रैक्टिव है इतनी आकर्षक है कि कोई बिरला ही व्यक्ति है जो सब बच सकते हैं। महाप्रभु से कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, महाप्रभु आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे, गौरनिताई के चरण कमल मेरे हृदय में रहे, फिर मेरे को संसार सुख की आशा नष्ट हो जाए। भक्ति मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, भक्ति यांत्रिक प्रोसेस नहीं है कि जैसे एक साल में इतना प्रोग्रेस हो साल में नहीं, आपकी फीलिंग से डिपेंडेंट है, किस भावनाओं से आप भगवान से अप्रोच कर रहे हैं, किस भावनाओं से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति से डिपेंडेंट है। कृष्ण भावग्राही है, किसी ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हो सेवा, उसमें देख रहे हैं कि आप किस भावना से कर रहे हो, क्या अगर अगर आप गलत रूप से भी कर रहे हो, कल महाराज बता रहे थे अगर आप कोई सेवा कर रहे हो सिंसियरली अगर आप गलत भी कर रहे हो तो कृष्ण प्रसन्न है, लेकिन ढंग से गलत भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर गलत सिंसियर नहीं है, चलो क्या फर्क पड़ता है कैसे भी करो नहीं करो सिंसियरली, लेकिन करते करते गलत भी हो जाए तो कृष्ण प्रसन्न है। एक इच्छा होनी चाहिए कृष्ण प्रसन्न है, बस वृत्रासुर यहाँ पर बोल रही कि तो जल्दी भगवान के धाम लौटना है और आप स्वर्ग का भोग करें, तो ये समझाते हैं कि स्वर्ग का सुख आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन, स्वर्ग तो है इंद्र का स्वर्ग लोक जो है वो ब्रह्मा से भी नीचे है और ब्रह्म लोक से भी पतन हो जाता है तो स्वर्ग लोक का कहना ही क्या, लेकिन अगर कोई भगवान के धाम लौटता है तो फिर उसका जन्म नहीं होता। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं By killing Vritrasur, Indra would not actually gain. He will remain in the material world. Vritrasur would go to the spiritual world. तो लड़ाई के बाद क्या होगा, वृत्रासुर भगवान के धाम जाएंगे और इंद्र भौतिक दुनिया में रहेंगे। Therefore, victory was destined for Vritrasur, not for Indra. तो युद्ध में विजय कौन हो रहा है, इंद्र नहीं वृत्रासुर। अगर दो भक्तों के बीच में कोई झगड़ा है समझो कोई फैसिलिटी के लिए ये कॉमन चीज है और नियम के अनुसार दोनों को अधिकार होना चाहिए या किसी को भी नहीं होना चाहिए, अगर कोई भक्त झुक जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं आप ले लीजिए, दूसरे व्यक्ति को फैसिलिटी मिल जाएगी और जो झुक गया उसको भगवान का धाम मिल जाएगा। फैक्ट जो प्रेरणा से सुनी थी ना फॉर्मूला है वैसे ध्यान कोई पासवर्ड है, फैसिलिटीज नहीं, धन नहीं, व्हीकल्स नहीं, पोजिशन नहीं, सीक्रेट पासवर्ड है प्रेरणादपि सुनिश्चित, भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरणादपि सुनिश्चित दासन। अगर आपका किसी भक्त से कोई भेद है और आप सोचते हैं मन में कि मैं तो इसका दास, ये कृष्ण के दास है, ये गुरु की सेवा के लिए कर रहे हैं और मैं गुरु का दास नहीं, मैं गुरु के दासों का दास हूँ, ये सोच के आप झुक जाते हैं उसको सुविधा दे देते हैं तो उसको सुविधा मिल जाएगी, अब वो जाए कि नहीं जाए पता नहीं, लेकिन आप जरूर जाएंगे दासी बारे, हालांकि किसी को पता नहीं होगा, परमात्मा जानते हैं कि आप क्या सोच के कर रहे हैं। भक्ति बहुत बुरी चीज है, कभी कंप्लेन नहीं देखते, इतने बड़े बड़े कई मंदिरों को बनाने वाले डिवोटीज भी मंदिर में नहीं रहे, थोड़ा अभिमान आ गया, कुछ साधना लूज हो गई, नहीं बना सकते, बड़े बड़े चिंतन या संन्यास। अगर ये बात सही मालूम होगा तो दोनों एक दूसरे को सुविधा देना चाहेंगे। ऐसा नहीं सर, भक्ति में ऐसा ही होता है। एवरीबडी इज थिंकिंग आई एम दास, मैं दास संन्यास हूं। सर एक क्वेश्चन,
हे इंद्र, आपके वज्र के प्रहार से मैं सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और मैं शरीर को त्याग कर दूंगा और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अपने मन को भगवान अंतरशन के चरणों में केंद्रित करूंगा और मैं वो गति को प्राप्त करूंगा जहां पर नारद मुनि जैसे महान संत और भक्त रहते हैं। ये मित्रासुर की प्रार्थना है कि मैं महाजन ये न दत्त सकूं। ये नारद मुनि का मार्ग है, नारद मुनि के गुरु है, क्योंकि किसी जन्म में मित्रासुर जो है वो चित्रकेतु महाराज था। आप वो कहानी जानते हैं कैसे नारद मुनि ने उपदेश दिया था, तो नारद मुनि के चरणों की धूल से हमेशा भक्त होते थे। श्री गुरु चरण पर गुरु के चरण, वैष्णव के चरण उसको ऐसी पकड़ लेते ध्यान से पकड़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अहम समाधाय मनः, इस श्लोक में बताया गया अहम समाधाय मन इंडिकेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी एट द टाइम ऑफ डेथ इज टू कॉन्सेंट्रेट वन्स माइंड। अंत समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को केंद्रित करना। अगर कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर सकते हैं, विष्णु के, संकर्षण के या कोई भी, उसके जीवन सफल होगा। भगवान संकर्षण के चरणों में ध्यान केंद्रित करते हुए मित्रासुर बोल रहे थे कि आप वज्र छोड़ दें, मैं तो वज्र से लड़ नहीं सकूंगा, वो भगवान का भेजा हुआ, क्योंकि मेरा मन भगवान के चरणों में केंद्रित है। अभी रामनवमी वाले दिन रामनवमी के दिन पहले महाराज महाराज को जुहू मंदिर में गए थे, राजा राश बिहारी मंदिर में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था और श्री प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे सब भक्तों के लिए। तो महाराज यही पढ़ रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मेरा मन जो है कृष्ण में लगा रहे। प्रभुपाद जी का एक फेमस श्लोक था कुलशेखर महाराज का, प्रभुपाद जी अक्सर गाते थे, आपने सुना होगा शायद प्रभुपाद जी के सीरीज में, कृष्ण प्राण प्रणाय समय सफल। जैसे ही महाराज ने श्लोक बोला राधा रस बिहारी के दर्शन खुल गए। महाराज बता रहे थे राधा रस बिहारी इज ऑर्केस्ट्रेटिंग ऑल द प्लान्स, हमारी इच्छा होनी चाहिए मेरा मन भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहे। और मित्रासुर यही आशा कर रहे हैं, मित्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं कि अब मैं अपने भगवान संकर्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, अब वज्र का आक्रमण करो और जिससे मैं भगवान के धाम जा सकूं। अ डिवोटी इज ऑलवेज रेडी टू गिव अप हिज मटेरियल बॉडी। एक भक्त को भौतिक आकर्षण नहीं होता, अरे ये जनरली ये व्यक्ति का राजनाथ स्वामी महाराज के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। वो लंदन में थे और आपको मालूम होगा कि उनका एक ऑपरेशन होना था, दिल्ली जब व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो व्यक्ति को काफी डर भी लगता है, हम लोग मिलने भी आते हैं। तो उस समय महाराज कहने लगे, वो कहने लगा कि व्यक्ति को जब ऐसी स्थिति होती है तो आसक्ति के कारण अपने परिवार और अपने भौतिक चीजें याद आती। तो महाराज मुस्कुरा कर कह रहे थे गौरंग सन्यासी, भगवान अगर जो भी करना चाहे मुझे कोई आसक्ति नहीं। उसको भक्त और भगवान की सेवा के लिए शरीर को जीवित रखना चाहते हैं, जितना भगवान चाहे उतना। महाराज बता रहे थे कि भक्त आसक्ति नहीं होती, भगवान चाहे जो भी भगवान चाहे, वो भगवान चाहे मुझे बिजली स्थिति में रखे। सर भोपाल जी बोलते हैं डिवोट इज ऑलवेज रेडी टू गिव अप मटीरियल बॉडी बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट एट ऑल गुड, इट इज सिंपली अ कॉज ऑफ बॉन्डेज मटीरियल वर्ल्ड। ये भौतिक शरीर जो है इसने हमको बांध के रखे है, अगर ये त्याग कर भगवान के धाम जाना है तो कोई चिंता नहीं। हालांकि मूर्ख लोग जो है वो पूरी श्रद्धा शरीर में देते हैं और भगवान के धाम नहीं जाना चाहते।
persons who fully surrender at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and always think of His lotus feet are accepted by the Lord as His personal servants. जो व्यक्ति हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान उनको अपना पार्षद मानते हैं। भगवान उन सेवकों पर कभी स्वर्ग सुख नहीं देते, नहीं पाताल का सुख देते हैं, न धरती का सुख देते हैं। क्योंकि जब किसी के पास भौतिक ऐश्वर्य होता है तो उसकी शत्रुता बढ़ जाती है। ये बात आज भी देखोगे, जब भी किसी व्यक्ति के पास ज्यादा अच्छा घर, ज्यादा अच्छा कार या ज्यादा अच्छे कोई भौतिक सुविधा होती तो लोग शत्रु बनने लगते हैं, चिंता भी बढ़ जाती है। आपने भी समझा, सुविधा से आए हैं तो सोचना पड़ता है कि शत्रु नहीं तो नहीं, मेंटेनेंस रखना होता है, कितनी चुराया तो नहीं, कोई भौतिक चीज होगी। और एंग्जाइटी, तीसरा मेंटल एजिटेशन, मानसिक दुविधा होने लगती है, मन विचलित होने लगता है और प्राइड बढ़ता है, अभिमान बढ़ जाता है। ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास से चीजें मिलती हैं और जब होती है तो चिंता से कोई ले भी जाए और अंत में चोरी हो जाती है तो दुख होता है। इसलिए वृत्रासुर बोल रहे हैं कि मेरे को ये भौतिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की प्राप्ति चाहिए। भगवान कभी भी अपने सेवकों को भौतिक लाभ नहीं देते, बहुत कम एग्जाम्पल है, ज्यादा करके भगवान सत्याम अनुग्रह हरिश्यम दत्तांश्यम। कल राधानाथ महाराज ठंडे लेक्चर बता रहे थे कि जब आप गाते हो मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, हमें केयरफुल रहना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले, ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखे, हम सुख के कल भजन गा रहे हैं, उसका मीनिंग इम्पोर्टेंट है। भगवान की शत्रुता करने से कुछ ही नहीं। एक बार न्यू वृंदावन में जब बहुत सारी समस्याएं आ रही थी तो वहां के लीडर्स जो थे राधाना स्वामी महाराज और कुछ लीडर्स का मिलकर एक दूसरे कम्युनिटी में गए, दूसरे समुदाय में, ये देखने के लिए कि कैसे यहाँ की समस्याओं का हल किया जा सके। तो उन्होंने बताया कि हम न्यू वृंदावन में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पास भी 600 एकड़ जमीन है, आपके पास भी उतनी जमीन है, लेकिन यहाँ की समस्याएं हैं। तो वहां के लीडर वो भी सन्यासी थे, उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पे जो इष्टदेव कौन है, आपकी मेन प्रिसाइडिंग डीटी कौन है। जवाब दिया राधा वृंदावन चंद्र यानी कृष्ण। तो उस बात का बोली यही समस्या, हमारे कम्युनिटी में शंकर जी की मिलती है। महाराज मुस्कुराकर बोले ठीक है, मम्मी बोले नहीं लेकिन मम्मी सोचा नहीं हम कृष्ण को ही रखेंगे। जनरली कृष्ण के भक्तों को तकलीफ ही होती है, जब तक हम पूरे शुद्ध नहीं तब तक तकलीफ होती है। कोई भी आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं भगवान उसको क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध बनाते हैं। और ज्यादा अगर कोई सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं तो और ज्यादा तकलीफ से आती है। भक्ति से भक्ति से महाराज ने प्रार्थना की भगवान से कि मेरे को तकलीफ ही भेजो, मैं सब इस्कॉन डिवोटीज के तकलीफों को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट है, ये तो ठीक है कि मेरे को तकलीफ आ रही है, कृष्ण मेरी तकलीफ को दूर कर दो, कम से कम भगवान के पास जा ही रहे हैं, चतुर्विधा भजन ते माम आरता है। लेकिन ऐसे बहुत लेस उदाहरण है शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति भगवान से कहे कि दूसरों की तकलीफ मुझे दे दो, क्योंकि उसी से तुम्हारा इतनी शुद्ध थे। ऐसा कारण था, वो बहुत अच्छा जप करते थे। मैं उनको कुछ दिन पहले उनकी कैसेट सुन रहा था, उनके जपा कैसेट, बहुत क्लियरली मंगलाती से पहले वो 16 माला जप कर लेते थे, बाद में उपाय भागवतम से पहले और सुना क्योंकि पति की मेहनत सकते थे। तो हमारे लिए संभव नहीं क्योंकि हमारे बहुत सारी सेवाएं हैं, धारणा है। अगर सेवा है तो बात अलग है, लेकिन अगर ज्यादा समय मिलता है तो सबको सोचना चाहिए कि मैं भी और जब करूँ प्रार्थना करूँ दूसरों के लिए। वासुदेव दत्त ने ऐसी प्रार्थना की, भगवान मुझे दूसरों की तकलीफ से मुझे दे, बहुत लेयर है ये स्थिति। अशील प्रभुपाद यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, कृष्णा वॉज मोर फेवरेबल टू वृत्रासुर देन टू इंद्र बिकॉज वृत्रासुर वुड गो बैक टू गॉड। बोथ वर डिवोटीज, द लॉर्ड अवॉर्डेड देम रिस्पेक्टिव बेनिफिशन दैट दे वांटेड। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भगवान पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, इंद्र को क्यों नहीं बैक टू गॉड ले जा रहे, इंद्र को नहीं ले जा रहे, वहां चाहते दोनों को ले सकते थे, एक ही वज्र से दोनों को मार सकते थे, बिना मारे भी बिना वज्र के नहीं, इंद्र के नहीं गई जाने, तो इच्छा नहीं है कैसे छोड़ के जाए। इतना सुंदर स्वर्ग है, प्राइवेट रूम होगा उनका, उनके गार्डन होंगे, सारी अप्सराएं होंगी, उनको सुनते ही अंदर कितने अप्सराओं को भेजते हैं, उनकी इच्छा नहीं थी। तो एक बार शुक्र चेती प्रभु बहुत सुंदर कहानी पिछली बार आदानाथ महाराज ने भागवत में बताई थी, शुद्ध कीर्ति प्रभु एक बार बता रहे थे, प्रभुपाद रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते चलने के लिए उनके हेल्थ के लिए, करीब एक घंटा रोज चलते थे प्रभुपाद मंगल आरती के कुछ समय बाद, बस दर्शनार्थी के लिए आ जाते थे। तो एक बार जब वो जा रहे थे, कई सीनियर भक्त उनके साथ जा सकते थे उस समय, बहुत ही सीनियर होते और कई उस चलने में कई बातचीत भी होते थे, कोई प्रश्न भी पूछते थे, लेकिन एक भक्त थे बहुत सीरियस और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। प्रभुपाद जी का वॉक खत्म हो, वो कार में बैठ गए, कार से फिर मंदिर जाते थे। जैसे ही वो कार का दरवाजा बंद होने लगा, ये डिवोटी दौड़ते हुए गए और कार और दरवाजे के बीच में जाके प्रभुपाद के चरणों में गिर पड़े। प्रभुपाद से प्रश्न पूछे, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये क्या एक चीज बताइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, शुद्ध कृष्ण भक्त बनने के लिए क्या चीज की जरूरत, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस होने, एक चीज बताइए। आप मुझे कोई जानता है क्या है, क्या आपको अगर कहा जाए कि एक चीज चलना नहीं, तो सभी सही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस समय बहुत ही दो अक्षर के शब्द बताया, इच्छा डिजायर, बस इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा थी इसलिए भौतिक संसार में आए, बस इच्छा स्ट्रांग होनी चाहिए तो मेरे भगवान के नाम को प्राप्त करें। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी इच्छाओं के लिए, आपकी इच्छा स्ट्रांग है, मान लो आपके आसपास दूसरे भक्त इतने स्ट्रांग नहीं भी है, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं भी है, या आपके मानसिक तकलीफें भी हैं, या आपके शरीर बीमारी भी है, तो भी आप मस्त नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं, बेड रिडन है, चल नहीं सकते, तो भी आपको कोई जब करने से रोक नहीं सकते। तुम्हारा ने इसको पूरा प्रवचन दिया कि आप मुझसे बहुत सुनना चाहिए तो बाद में आप सुन सकते, सिर्फ इच्छा पर। इंद्र में वृत्रासुर में ये अंतर है, अगर इंद्र भी चाहते भगवान के धाम जा सकते थे, भाई धरती पे थे, उन्होंने कृष्ण से भी प्रचार किया, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने नहीं स्वीकार किया, इच्छा की बात। कई बार हम नए प्रोग्राम शुरू करते हैं, कई बार बड़े प्रोग्राम में, जैसे मुंबई में बड़े प्रोग्राम है तो उसमें 10,000-15,000 लोग आते हैं, ये आज से 10 साल पहले सेंटेनियल वर्ष था, आपको याद है आपने से कुछ मुंबई में महाराष्ट्र बड़े बड़े, एक बार वनिता समाज में हुआ था दादर में, एक बार महालक्ष्मी बड़ा स्टेडियम है, क्या नाम लोग जाते हैं खेलने, वहाँ पे एक अच्छी चीज हुई, इतने गिरिराज महाराज, आदानाथ महाराज, इंद्रद्युम्न महाराज, बड़े थे 96 में, 15,000 में से बहुत कम लोग होते जो सिंसियर हो जाते हैं, सुनने जो सुनने के बाद भी समर्पण करते, तो इच्छा कोई बदल नहीं सकता। इंद्र की इच्छा थी मैं संसार में रहना चाहता हूँ, अच्छा प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा को भी पूरा किया। तो एकांत भक्त कृष्ण नेवर प्रोवाइड्स मटेरियल पोजेशंस, ये एकांत जो शुद्ध भक्त है भगवान से कभी कोई पोजेशन देते ही नहीं है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी समटाइम्स नीड सम पोजेशन फॉर प्रीचिंग, बट द पोजेशन ऑफ प्रीचर आर नॉट लाइक दोज ऑफ कर्मी, प्रीचर को भी कोई सुविधा की जरूरत होती है लेकिन कर्मी की तरह नहीं, तो कर्मी जो है जो भी सुविधा मिलती है उसको वो अपने कर्मों के कारण होती है, लेकिन प्रीचर को जो सुविधा मिल रही है वो भगवान के अरेंजमेंट है। जैसे कर्मी मेहनत करके अपने लिए कार खरीदी करते हैं, लेकिन जो प्रचारक है उसके लिए भगवान अरेंज करते हैं, मतलब तो कार या टू व्हीलर या साइकिल या दो पैर जो भी कर, तो भक्त की जो भी सुविधा है वो भगवान के द्वारा अरेंज है, इसलिए भगवान भक्त को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए सुविधा नहीं मिले तो। श्री प्रभुपाद जी बोलते थे अगर किसी ने कहा प्रभुपाद आप निंदा कर रहे हैं समाज की टेक्नोलॉजी की, आप ये सब कार यूज कर रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फैसिलिटीज, फैसिलिटीज नहीं हो अगर माइक्रोफोन नहीं भी होता तो भी प्रीचिंग का सिलेक्शन सही था। निमिशरण्य में कोई साउंड सिस्टम नहीं था, सुना है सुखदेव महाराज माइक पे बोल रहे हैं तो उन्होंने सुने, 80,000 संत सुन रहे हैं, डिपेंडेंट। Because a devotee never uses material possession for any other purpose than the service of the Lord, the possession of devotee are not to be compared to that of karmi. जो जो भी मिलता है वो भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, इसलिए तुलना नहीं की जा सकती किसी भौतिक चीज के साथ। हे भगवान, हमारे अभी लास्ट श्लोक पे आ रहा हूँ, कल राधा नस्व महाराज ने प्रवचन बताया था, हमारे भगवान यानी विष्णु या कृष्ण वो ये नहीं चाहते कि भक्त धर्म अर्थ काम से प्रयास करें। हे इंद्र, इससे पता चलता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं और ऐसी कृपा से शुद्ध भक्त को प्राप्त होती है जो भौतिक लाभ चाहते हैं उनको नहीं प्राप्त होती। भक्त वो है जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह है। आपने देखा बिल्ली कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चे का संघर्ष नहीं करना होता, बिल्ली अपने मुंह से बच्चे को उठा के एक संग सत्संग लिया। और दूसरा मरकट जो बंदर होता है, बंदर कैसे, बंदर के बच्चे जो है वो तुम्हार को पकड़ गए। लेकिन सरेंडर्ड वैष्णव है वो बिल्ली के बच्चे की तरह कृष्ण में दीक्षा रखती है, इसलिए वो भौतिक चीजों के लिए प्रयास नहीं करता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी मीन्स नो अदर डिजायर जस्ट टू सर्व कृष्ण इन दिस लाइफ और इन दी नेक्स्ट, ये जीवन में या अगले जीवन में सेवा करना चाहते हैं। ये विशेष कृपा है तो भक्त को मेहनत से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और धर्म अर्थ काम के प्रयास से मुक्त करता है। अगर व्यक्ति को चाहिए, कभी कभी ऐसा भक्त होते हैं जो मिश्रित भक्त होते हैं, उसकी इच्छा होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हो, भगवान दे देते हैं उसको। जैसे इंद्र है, ये देवता क्या है, देवता भी डिवोटीज हैं, लेकिन कैसे डिवोटी हैं, कर्म मिश्रित, उनकी इच्छा है कि थोड़ा हम एंजॉयमेंट करें और थोड़ा सेवा करें, मिक्स है वो, न जन्म न जन्म नहीं बोल सकते वो अपने शरीर से, वो हाई प्लेटफॉर्म है जो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे। इसलिए भगवान ने इंद्र की इच्छा थी इंद्र को उसने प्राप्त करना, वृत्रासुर फिर सेवा करना चाहते थे, इसलिए इंद्र के द्वारा भगवान वृत्रासुर के सारे भौतिक बंधन को नष्ट कर रहे हैं। और वृत्रासुर बोल रहे हैं कि आप जल्दी मुझे मारिए, सो दैट बोथ वुड बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस। ये बहुत अच्छा वाक्य है, बोथ इंद्र एंड वृत्रासुर विल बेनिफिट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस। प्रोपोर्शनल जितना भक्त की प्रगति है उसके अनुसार। एक बार जब राधा से हमारे न्यू वृंदावन में रहते थे तो उस समय बहुत साल न्यू वृंदावन में रहे और उनको बाद में सेवा दी गई टीचिंग की, कॉलेज टीचिंग, और कोई कार नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई जाना तो हिच हाइकिंग करके, हिच हाइकिंग नहीं तो कोई कार जा रही है बाहर दिखाओ फिर इसमें बैठ जाओ फिर छोड़ दूर जाओ फिर वहां उतर के फिर दूसरी कार जाओ, कोई गारंटी नहीं हिच हाइकिंग। अब बाद में एक सन्यासी मुंबई से कहीं किसी जगह से न्यू वृंदावन आए और वो प्रचार करना चाहते थे, समस्या थी उस लोगों को मुक्त होना चाहते थे, तो उनको सुविधा दी गई एक स्पेशल व्हीकल स्वयं के लिए और सब असिस्टेंट्स के साथ। राजनाथ महाराज जी समय लीडर थे, उनसे पूछा कि ये कैसा अन्याय है, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। तो उसमें उनको बताया गया कि वास्तव में ये व्यक्ति को समस्या इसलिए हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ज्यादा ऊंचा प्लेटफॉर्म है आपका भक्ति का, भगवान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर महाराज इंडिया में भी आए तो ऐसे नहीं कि गुरु या बड़े लीडर के रूप में, बस एक सेवक के रूप में बदल जाएगा, कोई सुविधा नहीं थी। जब राधा गोपी का मंदिर देख रहे हैं, ये आश्रम का जो साइज है उससे भी छोटा आश्रम था, और मंदिर का हॉल तो था लेकिन वो एक बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड था। जैसे आदिगढ़ राधा तो वो या उनसे पहले जो स्टूडेंट्स थे वहां पर उनके लिए खेलने की जगह थी, लेकिन क्योंकि उनकी शुद्धता थी, शुद्धता के प्रभाव से हमने इतना सुंदर मंदिर प्रकट कर लिया। 10 या 20 सालों में कितने प्रचित्र बदल गया। कोई भक्त सुविधा चाहता नहीं है, लेकिन कृष्ण दे देते हैं, कभी नहीं देते, भगवान जानते हैं भगवान से हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मुझे सुविधा दो, ये भी नहीं करनी चाहिए कि सुविधा ले लो। भगवान जो भी आप करोगे वो अच्छा है, मुझे आप मेरे हित चिंतित। और फिर वो बोलते हैं भगवान क्या मैं फिर से आपके दासों के दासों का दास बन सकूंगा, उन भक्तों का दास जो आपके चरणों में रहते हैं। हे भगवान मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ, उन भक्तों का जो अपने वचनों से आपका गुणगान करते हैं और शरीर से आपकी सेवा में लगते हैं। ये श्लोक आपको बाद में टाइम मिलेगा तो आप तो प्रत्येक ध्यान से पढ़ना। 6th canto 11th chapter verse 24 छठे स्कंध 11वें अध्याय का 24वां श्लोक जो कल आदमापुर महाराज ने दिया, ये पूरे भक्ति का सार है। तो भाई बोलते हैं परफेक्ट में दिस वर्स गिव्स द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द डिवोशनल लाइफ, भक्तिमय जीवन का सार क्या है वो यहाँ बताया गया। तो क्या है वन मस्ट बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दासी का दासी का दास दास अनुदास। महाराज बोलते अनु अनुदास, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, अनु यानी एटॉमिक, जो बहुत क्या बोलते हैं अनु यानी अनु जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत है तो मराठी में हिंदी में सेम अनु आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विष्णुम विदो कृपया तव पाद पंकज धूली, धूली का एक धाना बनना चाहता, धाना बनकर इनसिग्निफिकेंट, मैं प्रोमिनेंट नहीं बनना चाहता कि मेरे को प्रसिद्धि मिले या मेरी ख्याति हो, मैं छिप के सेवा करना चाहता। तो कृष्ण जानते हैं हृदय में मेरी क्या सेवा भावना, इसलिए बताया गया अनु प्रसन्न। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे भक्तों दासों का दास बनना चाहिए। वो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है गोपीर भरतूर तथा कमलयोर दास दास ना हम विप्र न जनरपति ना पी वैष्णव शूद्र, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं क्या हूँ मैं गोपियों के स्वामी कृष्ण के दासों के दासों के दासों के और एडवांस होंगे दासों के दासों के दासों के। इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं दिस मीन्स दैट वन मस्ट एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर हु कम्स इन परंपरा, परंपरा में आने वाले गुरु को स्वीकार करना चाहिए और फिर उनके उनके दासों का दास बनना चाहिए और अपने शरीर को मन को वचन में वचन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शरीर से जैसे अभी प्रभुजी कपा से भगवान की आरती बना रही है, मंदिर की सफाई करना, श्री विग्रह आराधना, शरीर से मन से भगवान का विचार करना इनसेसेंटली इनसेसेंटली मतलब निरंतर अथक निरंतर। एंड वन वर्ड शुड बी एंगेज इन प्रीचिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, शब्दों से भगवान की महिमा का गान करना, ऐसा कभी जीवन से करना। और फिर महाराज इसके बाद बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इलस्ट्रेट किया इस प्रिंसिपल को। चैतन्य महाप्रभु भी जब वैष्णव नहीं बने थे, वैष्णव बनने से पहले वो शिवास ठाकुर के कपड़े धोते थे, वे कपड़े फोल्ड करके रखते थे, कभी कभी डिवोटी उनको बोलते थे निमा ये तुम जो टाइम बर्बाद कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, भक्ति करो। निमा बोलते कि आपके आशीर्वाद से एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी मेरा संग लेना चाहेंगे। किसी को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, ईश्वरपुरी आए मोदी की पहली बार, ईश्वरपुरी का जन्म स्थान कुमारहट का था, हलीशार जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर महाप्रभु ने जन्म की भूल ली थी, हलीशार बोलते। तो ईश्वरपुरी नवदीप में आए तो बहुत सारे कपड़े पहने थे, कोई पहचान नहीं सका, लेकिन अद्वैताचार्य के मन में शंका हुई क्योंकि शुद्ध भक्त है वही पहचान सकते हैं। वो देखकर कहने लगे कि ये बहुत विशेष भक्त लग रहे हैं। मैंने पूछा तुम कौन हो, ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं शूद्रों में भी सबसे अनु हूँ। तो दिखाया कि अपनी एक्सटर्नल अद्वैताचार्य के शिवा ठाकुर ने श्लोक गाया भागवत से, और जैसे ईश्वरपुरी ने श्लोक सुना उनके आंखों से आंसू आने लगे और सब समझ लिया कि महान विष्णु है। ईश्वरपुरी रोज गदाधर पंडित को अपनी पुस्तक से पढ़कर सुनाते, उसका नाम था कृष्ण लीला, रोज पढ़कर सुनाते थे। और एक दिन वो निमाई पंडित को मिले और बोले निमाई इसमें कुछ सुधार करो, कुछ गलती होगी व्याकरण की दृष्टि से, कुछ गलती होगी सुधार करो। निमाई बोले आप वैष्णव, वैष्णव जो भी लिखते हैं जो भी बोलते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती।
अगर कोई गलती देखता है वैष्णव के लेखन में वो गलत है, कृष्ण दोष नहीं देखते।
शिवपुरी बोले आज भी बोल रहे हो सही है, लेकिन फिर भी कृष्ण के अलावा दूसरे लोग भी पढ़ेंगे किताब को, वो तो दोष देखेंगे। दूसरों के लाभ के लिए आप संशोधन करो। मैं पंडित लेकर गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने पुस्तक वापस भी बोले, उसमें एक ही दोष है। क्या था सर? आत्मनिपात। ये आत्मनिपात शब्द जो है ये आत्मनिपात की जगह परस्मनिपात में शिवपुरी ले गए पुस्तक को। तो विचार करके वो लौट के आए, वो बोले मैंने सोचा आपके बारे में, आप जो बोल रहे हो उसके बारे में, लेकिन मेरे मत में आत्मनिपात शब्द सही है। हमने सिद्ध किया कैसे सही है। अनिमाई पंडित इतने बड़े प्रोफेसर थे, 12 साल व्याकरण सीखने में लगते हैं, संस्कृत व्याकरण उसने शुरू किया नहीं किया तो अच्छा, क्योंकि कभी अंत नहीं होता। हमारे गोवर्धन में गोपी बरानंदन प्रभु सिखाते हैं व्याकरण, तो मैं वहाँ पे विद्यार्थियों से मिलता हूँ, उनसे 2 साल का कोर्स है। तो सब बोलते हैं हम सबसे अच्छा भाग लगता है कि क्लास के बाद कीर्तन होता है, क्योंकि व्याकरण बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन निमाई पंडित वही 12 साल के कोर्स को 2 साल 6 महीने में सिखा देते थे, क्रैश कोर्स। निमाई पंडित क्रैश कोर्स संस्कृत ग्रामर में। तो निमाई पंडित जो कितने बड़े प्रोफेसर थे, शिवपुरी से आर्ग्यूमेंट करते हैं और अंत में पराजय स्वीकार करते हैं। भगवान पराजय स्वीकार करते हैं 2 चीजें दिखाने के लिए, एक तो भारी ऋषि से ये दिखाने के लिए कि शिष्य को हमेशा गुरु से पराजय स्वीकार करनी चाहिए, और दूसरा अंतरंग ऋषि से दिखाने के लिए कि भगवान हमेशा अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, और गया में एक मंदिर है, उसको बोलते हैं विष्णु पाद मंदिर। उस मंदिर में बहुत सारी पूजाएं हो रही होती हैं, भगवान की अगरबत्ती और दिए जलाए गए होते हैं, एक ब्राह्मण स्तुति कर रहे होते हैं। ये वही चरण कमल है जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी पूछते हैं, ये वही चरण कमल है जहाँ से गंगा देवी प्रकट होते हैं, और निमाई शंकर बहुत खुश होते हैं और उस समय ईश्वरपुरी से मिलते हैं। ईश्वरपुरी को देख कर ही वो इतने प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई, क्योंकि आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस स्थान पर आकर पिंडदान करने से जिस व्यक्ति के लिए पिंडदान किया उसी का उद्धार हो सकता है, लेकिन आप इतने परम वैष्णव हो कि आपको देखने से ही हजारों हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार हो जाता है, आपके समान तो तीर्थ ही नहीं। ईश्वरपुरी बोलते हैं कि हे निमय पंडित, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम भगवान के अवतार हो। कल रात को मैंने स्वप्न देखा था, और सपने के अनुसार आज मुझे आपके दर्शन होंगे। दोनों इस तरह से कुछ मीठे मीठे वचन बोलते हैं, तो फिर दोनों अपने कार्य में अलग हो जाते हैं। निमाई कुछ प्रसाद बनाते हैं भगवान को भोग लगाकर स्वयं खाने के लिए, और उस समय ईश्वरपुरी आते हैं जस्ट ऑफरिंग पूरा होने के बाद, और ईश्वरपुरी मुस्कुरा कर बोलते हैं मैं सही समय आ गया, सही समय आ गया, सही समय आ गया। तुम्हें बोलता हूँ आपके लिए प्रसाद को ग्रहण करिए, लेकिन शिवपुरी बोलते अगर मैं लूंगा तो आप क्या लोगे, मैं फिर से बना लूंगा। शिवपुरी बोलते नहीं नहीं हम 2 भाग करेंगे। मैं पंडित बोलते आप सब कुछ ले लो, दिखाने के लिए कि कैसे वे भी अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, तो सब कुछ उनको अर्पण कर देते हैं। और फिर अदृश्य रूप से लक्ष्मी देवी प्रकट होती है, लक्ष्मी देवी फिर से बना देते हैं। कुछ एक दिन चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से गुप्त स्थान में मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। शिवपुरी बोलते आप मेरे से दीक्षा लोगे, स्वयं भगवान हो, मुझे आपके चरणों में समर्पण करना चाहिए। लेकिन ईश्वरपुरी कहते हैं निमय पंडित कहते हैं कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। कृष्ण पाद पद्म गंध देई से अमार, मेरे को कृष्ण के चरणों की धूलि दो। और फिर ईश्वरपुरी निमय पंडित को मंत्र देते हैं, 10 अक्षरीय मंत्र। पूछा महाराज से एक्चुअल बात की 10 अक्षरीय मंत्र क्या है, महाराज बड़ी बोल सीख रहे एक रहस्य।
से बात करने वाले पंडित जब गया से लौट के आते हैं तो प्रेम के लक्षण पसंद करने लगते हैं, वे गाने लगते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं यही कहना चाहूंगा कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रश्न है कोई कॉमेंट अलग के साथ सबको अच्छा लग रहा है वृत्रासुर का पढ़ना अच्छा की जय गौर भक्त बिंद की
भगवान कृष्णानंद प्रभु की जय।